नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 का नया संस्करण आज जारी किया जाएगा। और हॉकी FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला जर्मनी से, महिला टीम का मुकाबला स्पेन से आज शाम भुवनेश्वर में। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री और अमीर के बीच भारत और कतर के द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। अल थानी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। श्री अल थानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बातचीत करेंगे और उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन होगा। कतर के अमीर भारत की दो दिन की राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिनमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधि भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की अगवानी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कतर के अमीर की यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग शीर्ष एजेंडा होगा। भारत और कतर के बीच एक मजबूत आर्थिक साझेदारी है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार इजाफा हो रहा है। कतर की कंपनियों ने देश के तकनीकी बुनियादी ढांचे और विनिर्माण उद्योगों में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जबकि भारतीय कंपनियों ने कतर में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक विनिर्माण और तकनीकी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, कई क्षेत्रों जैसे लॉजिस्टिक, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे और राजमार्ग, सेमीकंडक्टर, खाद्य सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश के निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे राजीव कुमार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के पूर्व IAS अधिकारी हैं। वे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव भी रहे हैं। वहीं डॉक्टर विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा 1989 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में होने वाली बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। बैठक में नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में उल्लिखित पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के महानिदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 का नया संस्करण आज जारी किया जाएगा। इस संस्करण में स्कूली छात्रों में परीक्षा के तनाव, चिंता को दूर करने और दबाव में शांत रहने के बारे में विभिन्न बोर्ड और परीक्षाओं के कई टॉपर के विचार और सुझाव साझा किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा के संस्करण में परीक्षा योद्धा अपने सुझाव, अनुभव साझा करेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने परीक्षा के तनाव और चिंता को सफलतापूर्वक दूर किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग आज से 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि संरक्षण नक्शा के पायलट कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर मसानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना है ताकि भूमि स्वामित्व का सटीक और विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। सर्वे ऑफ इंडिया नक्शा कार्यक्रम के लिए तकनीकी भागीदार है। यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाएगी, जीवन को आसान बनाएगी, शहरी नियोजन को बढ़ाएगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। नक्शा पायलट कार्यक्रम की लागत करीब 194 करोड़ रुपए है, जिसे पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इस अवसर पर वाटरशेड यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से देहरादून में शुरू होगा। इस संबंध में कल विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में देहरादून में कार्य मंत्रणा समिति के साथ सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में बजट सत्र के बारे में चर्चा की गई। अध्यक्ष ने बताया कि आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में किए जाने वाले कार्य, पदाधिकारियों और धनराशि के हस्तांतरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। और अब खबरें महाकुंभ से। काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण में 200 प्रतिनिधियों ने प्रयागराज के महाकुंभ में संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। वाराणसी से प्रयागराज पहुंचा ये समूह उस कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत संपर्क का प्रचार करना और इसको मजबूत बनाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
महाकुंभ उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का संगम भी बन गया है। दक्षिण भारत से काशी तमिल संगमम का पहला दल कल महाकुंभ पहुंचा। काशी तमिल संगमम के लोगों ने महाकुंभ में भ्रमण के बाद अपने अनुभव साझा किए। तमिलनाडु के पनरुति शहर से आए श्रीधर राधाकृष्णन ने कहा कि ये आयोजन अपने आप में अद्भुत और दिव्य है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई से आए छात्र नारायण मूर्ति ने कहा कि महाकुंभ न केवल उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक संगम है, बल्कि वैश्विक संस्कृति और भाईचारे का मिलन स्थल भी है। प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्रों वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए संगम का आयोजन किया जा रहा है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
प्रयागराज महाकुंभ में अग्निशमन सेवा दल ने श्रीकपि मानस मंडल शिविर के 2 टेंटों में लगी आग को तुरंत बुझा दिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सऊदी अरब के रियाद में आज अमरीका और रूस के शीर्ष अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा होगी। इस बैठक के लिए रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव और विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव कल रियाद पहुंचे। दूसरी ओर अमरीकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ वहां रूसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। भारत की प्रसिद्ध निशानेबाज मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। पेरिस ओलंपिक में असाधारण प्रदर्शन के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम की जर्सी का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी दिखाते हुए तस्वीरें साझा की हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अपनी सिग्नेचर ब्लू जर्सी में नजर आएगी, जिसके दोनों कंधों पर तिरंगा और दाई ओर चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो होगा। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
हॉकी FIH प्रो लीग में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज शाम ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा हॉकी स्टेडियम में जर्मनी से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत ने 2 मैच खेले हैं और वो 3 अंक लेकर फिलहाल 8वें स्थान पर है। दूसरी ओर भारतीय महिला टीम का मुकाबला स्पेन से होगा। पहला मैच आज शाम 5:15 बजे खेला जाएगा और अगला मैच कल शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों मैच ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट में वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज शाम वडोदरा में ही गुजरात जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए, भारी बर्फबारी के कारण इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा और अंतिम चरण स्थगित कर दिया गया है। ये शनिवार को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होने वाला था। मौसम की स्थिति अनुकूल होते ही नए कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।
मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
धन्यवाद फरहत। दिल्ली में नई सरकार के गठन होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रामलीला मैदान में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। भाजपा विधायक दल की कल होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। 20 को नई सरकार का गठन। ज्ञानेश कुमार होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, नए कानून से हुई पहली नियुक्ति। अमर उजाला सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। भूगर्भ में प्राकृतिक बदलाव से दिल्ली में आया 4.0 तीव्रता का भूकंप। धावला कुआं के झील पार्क में 5 किलोमीटर गहराई में केंद्र। जनसत्ता सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, भूकंप के झटकों से थर्राया दिल्ली एनसीआर। प्रधानमंत्री ने लोगों से किया सुरक्षा उपायों का पालन करने का आग्रह। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेल मंत्रालय ने लिया बड़ा सबक, 60 बड़े स्टेशनों पर बनेंगे होल्डिंग एरिया। दैनिक जागरण की खबर है। देश के हर जिले में तैनात होगी वर्टिकल टेक ऑफ एम्बुलेंस, मेडिकल इमरजेंसी से दूर होगी ट्रैफिक की समस्या। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। विश्व के 79 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर रोक लगाई। कई देशों में बच्चों की शिक्षा और निजता पर बहस जारी। जनसत्ता की खबर है।
धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 का नया संस्करण आज जारी किया जाएगा। और हॉकी FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला जर्मनी से और महिला टीम का मुकाबला स्पेन से आज शाम भुवनेश्वर में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।